नमस्ते, मैं हिंदी एस एल ए का छात्र हूँ और मेरा मौखिक प्रस्तुतिकरण आज चेरी के बगीचे के नाटक के बारे में है और जिसके लेखक हैं एंटोन चेखव। इस प्रस्तुतिकरण में मेरा जो शीर्षक मैं के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है वर्ग विभाजन और जातीय भेदभाव और उसका समाज पे प्रभाव और अभिशाप जो जिसका छाप पड़ता है समाज पर। तो पहले ये कहानी में रेने वस्काया अपने दो बेटियां आन्या और वार्या के साथ पेरिस से मॉस्को वापस जाते हैं और वहाँ उन एक एक व्यापारी लोपाखिन और एक और उन वहाँ के और एक और व्यक्ति गायब भी वहाँ थे और वो बात करते हैं और रहने वस्ता को पता चलता है कि उसका बगीचा उनका बगीचा कर बहुत भारी कर्ज में है और सरकार उनसे वो बगीचा लेने वाला था और इसलिए लोपाखिन सोचता है कि वो परिवार के ज़मीन को हिस्सों में बनाकर बेच सकते हैं ताकि कर्ज चुका सकते हैं। और इसके कारण कहानी में हम देखते हैं कि समाज के अनेक मुश्किलों पर चेकोव प्रकाश डालते हैं और इसलिए एक उनके लिए एक पात्र जो वह जिसका इस्तेमाल वो करते हैं इस चीज़ के लिए है वो है ट्रॉफीमोव और वो एक वो बहुत हर कोई बात पर उनका उनका जो कहना है वो बात पर गहरी सोच डालते हैं और उसके बहुत विचार उत्पादक बातें होते हैं इस कहानी में। कहानी के लेखक एंटन चेखव वे 1860 में पैदा हुए थे मॉस्को के दक्षिण हिस्से में और उनका परिवार बहुत भारी कर्ज में था और इसलिए वे मेडिकल स्कूल जाके अपनी नौकरी बनाते हैं लेकिन उनको तब पता चलता है कि नाटकों लिखने में उनको ज़्यादा प्रसन्नता होती है और इसलिए वो एक नाटक लेखक बन गए। तो इस कहानी में जो मैंने हिस्सा चुना है वर्ग विभाजन और जाति भेदभाव के बारे में वो है पेज 27 और 28 पे जब लोपाखिन अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं जब वो उन्होंने थोड़ी सी पी रखी है और वो अपनी बातें करना चाहते हैं और इसलिए वे कहते हैं आपका भाई हमेशा बकता फिरता है रहने वस्काए से आपका भाई हमेशा बकता फिरता है कि मैं नीची जाति में पैदा गवार हूँ मैं धन का सांप हूँ लेकिन मैं उसकी रति पर भर परवाह नहीं करता। सो हम देखते हैं कि इस हिस्से में कि वो नीची जाति से हैं और इसलिए उनको लगता है कि समाज उनको एक नीची प्रकार से देखते हैं इसलिए उनके उनके पिताजी भी किसान थे और इसलिए इस ऐसे नीची जाति से ऊपर आने में उन्हें बहुत मेहनत लगी। कहानी के अंत में वह 90,000 रूबल से के साथ एक ज़मीन प्लॉट खरीदते हैं और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक किसान के बेटे के लिए। तो ये इससे हम देखते हैं कि इस कहानी में चेखव ने वर्ग विभाजन और जाति भेदभाव से का जो समस्या है उस पर थोड़ी सी ज्ञान दिया है और ट्रॉफीमोव से हमें बहुत ज्ञान मिलती है एक विचार उत्पादक चीज़ उन्होंने क्या की। हर कोई इस चेरी के बगीचे में हर कोई चेरी का जो महत्व था वो एक गुलाम या एक किसान के जीवन के की जान के मुताबिक थी और इसलिए बगीचा जो सुंदर था ना वो उनके मेहनत और पसीने से ही हुआ था तो वो ये कहना चाहते हैं। और जब हम इस कहानी के समस्या पर को देखते हैं हमें आज की दुनिया में पर भी बहुत प्रकाश मिलती है जैसे भारत में जो गरीबी और जाति में भेदभाव का बहुत बड़ा समस्या है जैसे म्यांमार में जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था वो जाति के वजह से लोगों को मारा डाला था जैसे ही दलितों पर भारत में जैसे मुस्लिमों भारत में तो ऐसी ऐसी समस्याएं देखकर हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलती है और हमें हम इन इन समस्याओं के प्रति अवेयर बनते हैं। अगर पाठकों पर जो इस कहानी का प्रभाव जो है वो है कि आज की दुनिया में हमें भेदभाव से कोई फ़ायदा नहीं होता, और भेदभाव की अवॉइड करने के लिए हमें थोड़े से और एक्सेप्टिंग बनना चाहिए। और जब गुलामी जैसी चीज़ की बात रहती है, जैसे पिछले साल जो जॉर्ज फ्लॉयड का हुआ था, और जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए इतनी बड़ी मुश्किल हुई थी, ये इन बातों की चर्चा करके ही इनका सामना हो सकता है। इस कहानी में बहुत सारे विचार उत्पादक बातें की जाती हैं, और बहुत सारे इनके जैसे जैसे ट्रॉफी के हम हर बात जो वो कहते हैं और उसके पीछे कोई छुपा हुआ मतलब होता है। और उसके अलावा एक हम देखते हैं साहित्यिक उपकरण की तरह एक दृश्य बिंब भी होता है, जब लोग वाकई रहने बस का है कि मतलब भूतकाल की शरीर के बारे में बात करें, वो उसको पतली दुबली बताते हैं। और हम देखते हैं कि लेखक जब रेनेवस्काया जब लोग आखिर ये चीज़ें कहते हैं अपने पिताजी के बारे में, अपने जाति के बारे में, रेनेवस्काया उसके बाद कहती है भाई मुझसे तो अभी बैठा नहीं जा रहा। तो ये एक व्यंग्यात्मक बात है, क्योंकि जैसे जो ऊंची जाति और ऊंची इनकम के जो होते हैं वो नीची जाति की कोई परवाह नहीं करते, उनके मतलबों को समझते नहीं हैं। और आई थिंक उसकी बातें हैं, देखते हैं उसके बाद क्या साहित्य
बस
निष्कर्ष।
निष्कर्ष में बोल दो।
इस कहानी से एंटोन चेखव जातियों और वर्गों के बारे की समस्या के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने उन्होंने आज के समाज के लिए भी ये प्रिडिक्ट किया होगा, और ऐसी ऐसी समस्याओं को बहुत ऊंची तरह से दिखाया गया है, परंतु आज के समाज में ये हर दिन देखी जाती हैं और हर दिन महसूस किया जाता है लोगों से, और इसलिए ये कहानी आज भी महत्वपूर्ण होती
धन्यवाद।
है जी।